તારીખ 4/9/1998 શ્રી સમયસર કલષ્ટિકા શ્લોક નંબર 13 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 112
પર્યુષણ પર્વનો 9મો દિવસ છે. આજે ઉત્તમ આકિંચન ધર્મનું વ્યાખ્યાન છે. ધર્મ ચોથા ગુણ સ્થાનથી પ્રાપ્ત હોતા હૈ, ફિર ભી યે મુખ્ય રૂપ સે મુનિ દશા કે વિષય મે યે બાત ચલી હૈ કે જિનકા મોહ નષ્ટ હો ગયા હૈ ઓર અપને આત્મહિત મે નિરંતર લીન હૈ તથા પવિત્ર ચારિત્ર કો ધારણ કરને વાલે હૈ ઓર જો વ્યવસાય ગ્રહ આદિ કા ત્યાગ કર મોક્ષ કે લિયે પૂર્ણ દશા કે લિયે નિરંતર ઉદ્યમવંત હૈ એસે મુનિ વિરલે હોતે હૈ. ઉસ મુનિયો કે શાસ્ત્ર ઉસ મુનિયો કો જો શાસ્ત્રદાન કરતે હૈ ઉનકે સહાયક હૈ એસે યોગી ભી જગત મેં દુર્લભ હૈ. એસા એક પદ્મનંદી આચાર્ય કે એક શ્લોક ઇધર લિખા દિયા હૈ. મુનિયો કો શાસ્ત્ર કા અગાધ જ્ઞાન હોતા હૈ તો ભી ઉસ જ્ઞાન કા ઉનકો મમત્વ ભી નહીં ઓર અભિમાન ભી નહીં હોતા ઓર વો દૂસરે મુનિયો કો અપના રહસ્ય બતાને મેં સંકોચ નહીં કરતે. દૂસરા મુનિ કોઈ બહુ આગે બઢ જાયગા મેરે સે ભી આગે બઢ જાયગા એસા માત્સર્ય ઓર ઈર્ષા ભાવ ભી મોક્ષ માર્ગ મેં નહીં આતા. કોઈ પીછે મુનિ હોતે હૈ ઓર કેવલ જ્ઞાન આગે લે લેતે હૈ તો ઉસકા હર્ષ હોતા હૈ, દૂસરો કો ઇસકા હર્ષ હોતા હૈ ઓર એસા પુરુષાર્થ હોને કે લિયે વો અપને કો પ્રેરણા સ્થાન મેં લે લેતે હૈ, ઉસકી અનુમોદના કરતે હૈ. ઠીક ઉસી પ્રકાર જ્ઞાનીઓ કો ઓર મુમુક્ષુઓ કો દૂસરે જીવ આગે બઢતે હૈ, આગે બઢા હુઆ દેખને મેં આતે હૈ તો ઉસકે પ્રતિ બહુમાન હોના ચાહીએ ઓર ઇસકી અનુમોદના હોની ચાહીએ. દૂસરા શ્લોક મેં એસા લિયા હૈ કે શ્રુત કે રહસ્ય કો જાનને વાલે વિતરાગી મુનિયો ને સમસ્ત પરવસ્તુ કો અપને આત્મા સે ભિન્ન જાનકર ઉનકા ત્યાગ કર દિયા હૈ. આકિંચન કા અર્થ વહી હોતા હૈ કે જો કુછ અપને પાસ રખને નહીં ચાહતે, પરિગ્રહ આદિ રખના નહીં ચાહતે, સબ પદાર્થ મેરે સે ભિન્ન હૈ, મેં નિરાલંબ નિરપેક્ષ અસંગ તત્વ હું, કિસી કે આધાર કી मुझे अपेक्षा नहीं है, क्योंकि मैं बिना किसी के सदा सर्वदा पूर्ण ही हूँ, इसलिए अभी भी पूर्ण हूँ, ऐसा अपना स्वरूप में वो लीन रहते हुए दूसरे पदार्थ की आकांक्षा नहीं रखते। वो इस प्रकार सम्यक प्रकार से आकांक्षा का त्याग, उसको कहते हैं आकिंचन, जिसमें आकांक्षा अपेक्षाएं बंद हो जाती है। इसलिए दूसरे पदार्थ ग्रहण करने के परिणाम नहीं होते, मैं इसको प्राप्त करूं, इसको मिलाऊं, इसको जुटाऊं, वो मिले तो ठीक है, वैसा मिले तो ठीक है। वो खुद अनुकूलता के लिए प्रयत्न नहीं करते, बाह्य अनुकूलता के लिए प्रयत्न नहीं करते, किसी से करवाते नहीं कि मेरे लिए ऐसी ऐसी अनुकूलता हो जाए, ये व्यवस्था आप लोगों को करनी है। फिर करवाते तो नहीं, बिना कहे कोई करते हैं तो उनका स्वीकार नहीं करते। स्वीकार करना वो इसकी अनुमोदना हो गई, करना कराना और अनुमंत करना मैंने सम्मत करना, अनुसरण करके सम्मत करना, उसको अनुमोदना कहते हैं, अनुमंता कहते हैं। तीनों का फल एक है, और उसमें तो अनुमोदना में अभिप्राय का दोष भी हो जाता है, वो कभी ऐसा स्वीकार नहीं करते। सभी प्रकार के द्रव्य क्षेत्र काल भाव में मुनिराज को कोई प्रतिबंध नहीं होता। ऐसी मुनि दशा को देख करके और उसकी भावना रख करके मुमुक्षु को भी जितनी हो सके उतनी अपेक्षा वृत्तियों को शांत करनी चाहिए। क्यों कि जगत में प्राणियों को दुख किस बात का है? प्रतिकूलताओं का दुख नहीं है, अपेक्षा वृत्ति का दुख है। जितनी अपेक्षा वृत्ति ज्यादा उतना दुख भी ज्यादा। इसलिए जिसको दुख से मुक्त होना हो उसको अपेक्षा वृत्ति को शांत रखनी चाहिए, और जितनी अपेक्षा वृत्ति कम होती है उतनी शांति बनी रहती है। क्योंकि अपेक्षा वृत्ति का कोई ठिकाना नहीं है, कम कितनी अपेक्षा बढ़ जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। और पुण्य योग से कुछ अपेक्षाएं अपेक्षा के अनुसार अन्य पदार्थ का संयोग होता है, जीव की अपेक्षा और बढ़ जाती है। हजारपति को लखपति होना है, और लखपति होने के बाद करोड़पति के विचार आ जाते हैं। और वैसे ही आयुष दुर्लभ ऐसा मनुष्य भव वैसे ही खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है क्या, जीव हार जाता है, मनुष्य भव को खो बैठता है, हार जाता है। हार जाता है इसलिए कि मरने के समय हाथ में तो कुछ रहता नहीं, जो भी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जितना भी परिश्रम किया सब परिश्रम व्यर्थ हो जाता है, खुद के लिए कुछ नहीं रहता। आमतौर लगभग बदा सरखा एक अर्थ में वपराय से, इच्छा अपेक्षा आकांक्षा एक अर्थ में। तो जो ज्ञानी है, मुनि है, चारित्रवंत है, उनको चारित्रमों के कारण से कुछ विकल्प आ जाए तो अंतर्मुख होकर के सम्यक पुरुषार्थ से उनका नाश करने का वो उद्यम करते हैं और उसमें सफल होते हैं। उसको उत्तम सम्यक प्रकार, उत्तम माने सम्यक प्रकार का आकिंचन धर्म कहने में आता है। जो वितरागी धर्म है उसका ये एक पहलू है, उसका एक लक्षण है, इसका ऐसा भी एक स्वरूप है, ऐसा जानना चाहिए। ये आकिंचन के विषय में संक्षेप में व्याख्यान है। अब जो चलता हुआ स्वाध्याय है, समयसार कलश टीका का 13वां कलश चलता है। श्लोक का विषय है कि आत्मानुभूति और ज्ञानानुभूति दोनों एक ही बात है, भाव एक ही है, अलग अलग शब्द से बोला जाता है। अलग अलग अपेक्षा से, विवेक्षा से कहा, उसमें भी कहने वाले का कुछ स्पष्टीकरण देने का अभिप्राय है कि आत्मानुभूति कहने में अवलंबन को दिखाना है और ज्ञानानुभूति कहने में स्वसंवेदन को दिखाना है। प्रश्न उठाया है कि कहीं पर तो आत्मानुभव करने से आत्मा शुद्ध होता है, कहीं पर तो शास्त्र में ज्ञान गुण मात्र यानी ज्ञान का वेदन आने से आत्मा शुद्ध होता है ऐसा कहने में आता है, तो उसमें कोई अंतर है क्या, कोई फर्क है क्या, ऐसा प्रश्न उठाया है। उत्तर ऐसा है कि कोई फर्क नहीं है, कोई विशेषता नहीं है, दोनों एक ही बात है। वही कहते हैं श्लोक में, संस्कृत में ऐसे शब्द पड़ा है कि या शुद्ध नयात्मिका आत्मानुभूति ही इति किलियम एव ज्ञानानुभूति ही इति बुद्धवा। जो आत्मानुभूति, आत्मानुभूति माने कि आत्मद्रव्य का प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद है, आत्मद्रव्य का प्रत्यक्ष दर्शन है, आत्मद्रव्य का प्रत्यक्ष अनुभव है, साक्षात्कार है, उसको कहते हैं आत्मानुभूति। कैसी है वो आत्मानुभूति? कि शुद्ध नयात्मिका, शुद्ध नयी अर्थात शुद्ध वस्तु वही है आत्मा। शुद्ध नयात्मिका, शुद्ध वस्तु जिसका आत्मा है, आत्मा मैंने विषय है, अभेद भाव से जिसने विषय कर लिया, जिस नय ने शुद्ध वस्तु का, शुद्ध स्वरूप का अभेद भाव से आत्मा बना करके विषय कर लिया, शुद्ध वस्तु वही इसका आत्मा है, ऐसा विषय किया है। यानी स्वभाव, आत्मा माने स्वभाव जिसका ऐसी है। क्या किया कि आत्मानुभूति है वो शुद्ध नयात्मिक है, नय है वो श्रुत ज्ञान प्रमाण का, प्रमाण ज्ञान का एक अंश है, श्रुत प्रमाण का एक अंश है। एक अंश मैंने जिस अंश के द्वारा वो शुद्ध स्वरूप को अवलंबन करके उसको अभेद अनुभव करता है उसको कहते हैं शुद्ध नय। दूसरे शब्द में ऐसे कहते हैं कि जिस ज्ञान का अंश का प्रयोजन केवल अपने शुद्ध स्वरूप को ही अवलंबित करने का है और अभेद होकर अनुभव करने का है उसको कहते हैं शुद्ध नय। भावार्थ ऐसा है, इस बात का भावार्थ ऐसा है कि निरुपाधिपने निरुपाधि रूप से जीव द्रव्य जैसा है वैसा ही प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद आए उसी का नाम है शुद्धात्मानुभव। जीव द्रव्य जैसा है वैसा, शुद्ध बाद में शुद्ध शब्द लगाया, जैसा है वैसा अनंत गुण संपन्न उसका प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद आए उसको अवलंबन करके जो आस्वाद आए जो अनुभव होवे वो वचनातीत है और विकल्पातीत है मनातीत है उसको कहते हैं शुद्ध आत्मा का अनुभव। उसको कहते हैं शुद्ध स्वरूप का, परम तत्व का, परमात्म तत्व का साक्षात्कार। निश्चय से, खरेखर निश्चय से यह जो आत्मानुभूति कही, आत्मा का साक्षात्कार प्रत्यक्ष बताया, वही ज्ञानानुभूति है। वो ज्ञान का स्वसंवेदन रूप होता है। वो आस्वाद क्या होता है कि ज्ञान का स्वसंवेदन, ज्ञान स्व मैंने अपने को, वेदन मैंने अनुभव करे उसी को कहते हैं स्वसंवेदन और उसी को कहते हैं ज्ञानानुभूति। इतना मात्र जान करके दोनों बात की अविशेषता, मैंने एक पना जान करके क्या होना चाहिए ऐसा करके आगे की बात कहते हैं कि ऐसा जान करके आत्मना आत्मनि निवेश, वो बात उधर लागू करने का है कि ऐसा जान करके आत्मा से आत्मा में निष्क्रम निष्प्रकंपम अचलित रूप से कंपन हुए बिना विचलित हुए बिना लीन हो जाना, डूब जाना, प्रवेश कर जाना, स्थिर हो जाना, जम जाना, ऐसा जानकर आत्मा में जम जाना। दोनों शब्द अलग है, दोनों का भाव समझ करके स्वरूप में लीन हो जाना, वो इसका तात्पर्य है। भावार्थ ऐसा है कि जीव वस्तु का जो प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद उसको नाम से शब्द से आत्मानुभव ऐसा कहने में आता है, अथवा उसको ज्ञानानुभव ऐसा भी कहने में आता है। आत्मा का साक्षात्कार कहो या ज्ञानानुभव कहो, शब्द भेद है, वचन भेद है, कथन भेद है, भाव भेद नहीं है। नाम भेद है, वस्तु भेद नहीं है, या अनुभव में कोई अलग अलग अनुभव है ऐसी बात नहीं है। ऐसा जानना कि ऐसा आत्मानुभव ही मोक्ष मार्ग है। अब जो बात कहते हैं वो थोड़ी विशेष बात कहते हैं इस पर से कि ऐसा जानना कि यह जो बात कही आत्मानुभव की या ज्ञानानुभव की, वही मोक्ष मार्ग का स्वरूप है। वास्तव में वही वास्तविक मोक्ष मार्ग है, इसके सिवा कोई दूसरा मोक्ष का मार्ग है ही नहीं। इस बात पर, इस प्रसंग पर एक दूसरा भी संशय होता है, यानी आशंका होती है कि कोई जानेगा कि द्वादशांग कोई अपूर्व लब्धि है। क्या बोला कि ज्ञानानुभव की बात क्या ने? तो ऐसा ज्ञानानुभव जो है जिसको होता है, ज्ञानी को शास्त्रों का अल्प ज्ञान भी हो सकता है, और किसी ज्ञानी को 12 अंग का विस्तार वाला ज्ञान होता है जिसमें करोड़ों श्लोकों का ज्ञान हो, कितना करोड़ों अरबों श्लोकों का ज्ञान हो, और उतना पढ़ने में तो आयुष्य तो उतना होता नहीं। तो कोई लब्धि, ज्ञान की लब्धि प्रकट होती है उसमें 12 अंग का ज्ञान हो जाता है, और गणधरों को तो होता ही है, उसको तो अंतर्मूर्त में हो ही जाता है। तो यहां कोई कहेंगे कि वो आत्मानुभव को अपूर्व ज्ञान कहना या 12 अंग का ज्ञान को अपूर्व ज्ञान कहना, जबकि 12 अंग का ज्ञान आत्मज्ञानी को ही होता है, मिथ्या दृष्टि को, अज्ञानियों को होता नहीं। अब चर्चा का विषय क्या है? फिर चर्चा का विषय कौन सा है कि एक विस्तार, ज्ञान का विस्तार जो क्षोभसम है, विस्तार पूर्ण क्षोभसम है, हम उसकी महत्ता करें, हम उसकी महिमा करें, हम उसका ज्यादा मूल्य करें, या आत्मानुभव का अधिक मूल्य करें, किसका करें? दूसरा प्रश्न इस तरह से है कि एक अंतर्ज्ञान है जो आत्मज्ञान है, आत्मानुभव है, वो अंतर्ज्ञान है। एक बाह्य ज्ञान है जो अंग पूर्व का ज्ञान है, भले ही आत्मज्ञानी को होता है फिर भी वो बाह्य ज्ञान है। क्या है? को किसकी महिमा आनी चाहिए? बहुभाग मुमुक्षु को बाह्य दृष्टि जब तक होती है उनको बाह्य ज्ञान की महिमा आती है। किसी भी विद्वान को बहुत बाह्य ज्ञान होता है, अनेक ग्रंथों का ज्ञान होता है, समाज आकर्षित हो जाता है। क्या होता है? बहुत समाज इकट्ठी हो जाती है, बहुत संख्या में, बड़ी तादाद में लोग सुनने को जाते हैं, उसका निषेध करते हैं, या क्या करते हैं, निषेध करते हैं कि जीव को बाह्य ज्ञान की महिमा नहीं करनी चाहिए, अंतर ज्ञान की महिमा करनी चाहिए। ये चर्चा छेड़ने के पीछे राजमल जी का यही अभिप्राय है कि अंतर ज्ञान से ज्ञानी को पहचानो, बाह्य ज्ञान से ज्ञानी को मत पहचानो, ऐसा कहने का अभिप्राय है। देखिए, जगत को तो आकर्षण बाह्य ज्ञान का ही होता है, जो ग्रंथ ग्रंथों में से पुरपाठ बोलते हैं, हाँ, एक पीछे एक श्लोक का उत्तरण करे, हाँ, और बहुत शास्त्रों का ज्ञान हो तो लगता है लोगों को क्या ज्ञान है भाई, इसके पास कितना ज्ञान है, समुद्र जैसा ज्ञान का समुद्र है इनके पास, तो ऐसा बोलेंगे। तो इस तरह से ज्ञान की महिमा नहीं आनी चाहिए, ये अभिप्राय है कैसे कहने का। इसलिए यहां प्रश्न उठाया है कि कोई जानेगा कि द्वादशांग ज्ञान कोई अपूर्व लब्धि है, वो सूक्ष्म ज्ञान की चरम सीमा है। किसी को विस्तार वाला ज्ञान होता है तो अधिक से अधिक कितना होता है, तो 12 अंग का ज्ञान होता है, बस समाप्त हो गई बात, इससे आगे किसी को नहीं होता। फिर जो विस्तार वाला ज्ञान है वो केवल ज्ञान में जाता है, सदमस्त को 12 अंग से ज्यादा ज्ञान नहीं होता है, और वो भी लब्धि पूर्वक होता है, तो वो अपूर्व लब्धि हुई कि नहीं हुई। तो कहते हैं कि हमारी गिनती में या हमारे नाप में इसका समय के द्वादशांग ज्ञान भी विकल्प है। जितनी विकल्प की कीमत है, जितना विकल्प का मूल्य है, उतना ही मूल्य द्वादशांग ज्ञान का है, ज्ञान का विस्तार का है, उतना ही मूल्य है। बहुत विचार करने लायक मुद्दा है, इस मुद्दे पे बहुत विचार करना चाहिए कि कहीं बाह्य ज्ञान से हमको आकर्षण और महिमा नहीं आ जाए। इस वो तो एक विकल्प है, क्या बोले, विकल्प है। 12 अंग का ज्ञान एक विकल्प है, वो भी विकल्प है, वो दूसरा कुछ नहीं है। जैसे विकल्प से आत्मा को कोई लाभ नहीं, विकल्प से आत्मा को कोई गुण नहीं होता, विकल्प से आत्मा को कोई शांति नहीं मिलती, आत्म शांति नहीं आती, ऐसे शास्त्र का विस्तार वाला विकल्पात्मक ज्ञान से आत्मा को शांति नहीं मिलती। जितने श्रुत ज्ञान के विकल्प ज्यादा चलते हैं उतनी अशांति भी ज्यादा होती है, ऐसी बात है, है? क्या नहीं, आकुलता तो था, तो विकल्प उठो। देखिए, आत्मा को शांति कब मिलती है कि आत्मा जो अनंत शांति का पिंड है, जिसमें बेहद शांति भरी हुई है, उसमें लीन होने से, डूब जाने से आत्म शांति मिलती है। जितने अंश में ज्ञानी भी इससे बाहर निकलते हैं और विकल्पात्मक ज्ञान में आते हैं, शास्त्र ज्ञान में आते हैं, उतनी अशांति वहां होती है। मछली पानी से बाहर आई, किनारे पे पड़ी, भले किनारा भीगा हुआ हो, किनारे की रेत मिट्टी भीगी हुई होती है, फिर भी वो तड़फड़ाहट क्या होता है, तड़फड़ाहट होता है, उसको होता है, दिखने में आता है कि नहीं आता है, उछलेगी उसको अशांति हो जाएगी। ऐसे जो निर्विकल्प आत्म शांति में लीन होते हैं शुद्धोपयोग के काल में, फिर विकल्प में आते हैं ज्ञानी, जैसे मछली पानी में से बाहर आई, वो विकल्प आत्मा के होते हैं। निर्विकल्प अनुभव से छूटने के बाद शुरुआत की जो सेकंड है, मिनट है, उसमें दूसरे विकल्प तो होते ही नहीं, अभी तो वही घोलन चलता है, वही घुटन चलता है, आत्मा का ही चलता है, फिर भी मछली पानी से बाहर आई समझो। विकल्प उपयोग बाहर निकला, बाहर निकला के यम का दूत समझो, यम दूत देखते हैं उसको ज्ञानी। ऐसे शांति अशांति की तुलना किया है ज्ञानियों ने, ऐसी शांति अशांति की तुलना किया है। कहीं लोग तो आत्मा के विकल्प में ही संतुष्ट हो जाता है, मंद कषाय की शांति, ध्यान व्यान के शिविर में जाते ना, ध्यान केंद्र में ध्यान लगाते, मानसिक शांति में संतुष्ट हो जाते, ये तो मनातीत शांति है, उसकी क्वालिटी अलग होती है बिल्कुल, कि जिस क्वालिटी के आगे मानसिक शांति को अशांति बोलने में आते हैं, क्या बोलने में आता है, अशांति बोलने में आता है, वैसी बात है, वो समझाने का यहां अभिप्राय है कि भूल से भी बाह्य ज्ञान का विकल्पात्मक स्थिति की महिमा मत करिए, वो तो विकल्प है, और द्वादशांग में भी ऐसा कहा है, या द्वादशांग में भी ऐसा विधान है कि शुद्धात्मानुभूति मोक्ष मार्ग है, द्वादशांग ज्ञान मोक्ष मार्ग है ऐसा नहीं बोला, बाह्य ज्ञान को विकल्प ज्ञान, विकल्प वाला ज्ञान को मोक्ष मार्ग नहीं बताया, शुद्धात्मानुभूति मोक्ष मार्ग ऐसा विधान है वहां भी, इसलिए वो अलग अलग प्रकरण है। मुमुक्षु की भूमिका में तो आत्मानुभव नहीं है, फिर भी मुमुक्षु को जितनी अपेक्षा ज्यादा उतनी अशांति ज्यादा, सोच समझ करके भावना के बल से जितनी उदासीनता आती है उतनी अशांति उसको कम होती है। नहीं, अभी तो मानसिक शांति आती है, आती है मानसिक शांति आती है, इसलिए वहां संतुष्ट होने का तो सवाल है ही नहीं, क्योंकि वहां तो मनातीत दशा हुई नहीं, तो होगी मानसिक शांति। किसको, किसका सहयोग, संयोग है, सहयोग स्वीकार करने में, हाँ अनुबंध आ जाती है। अपने लिए कोई सहयोग करता है तो उसका अनुमोदन हो ही गया। फिर भी दृष्टांत दे करके प्रश्न निकालो तो और स्पष्टीकरण करें। हाँ तो अनुमोदन आएगी, इसे अनुमोदन हो जाती है। अभिप्राय नहीं है तो निषेध आना चाहिए, निषेध वाला अभिप्राय खड़ा होना चाहिए। कहीं अभिप्राय हमारा नहीं है इसका छल तो नहीं हम पकड़ते, वो बात देख लेना चाहिए। हमारा अभिप्राय तो नहीं था, क्या करें, वो जबरन करते हैं क्या, उनके भाव से करते हैं, हमने तो बोला नहीं था, लेकिन अपने आप करते हैं, अपने आप करते हैं, लेकिन अनुमोदना है कि नहीं है। क्या हमको अच्छा लगा कि नहीं लगा, मुमुक्षु को भी लेना चाहिए। मुमुक्षु को ज्ञानी का अनुसरण करना है, और जो ज्ञानी का अनुसरण करने के प्रयास में है उसी को मुमुक्षु कहते हैं। मुमुक्षु है वो प्रयत्न दशा है, क्या है, ज्ञानी है वो प्रयत्न में सफल हो गए, तो मुमुक्षु की भूमिका के आगे कर आगे जा करके वो ज्ञानी बन गए। तो मुमुक्षु है वो प्रयत्न दशा वाला है, ऐसी बात है। कोई हमको सहयोग करता है और हमको अच्छा लगा तो स्वीकार हो गया। अभिप्राय ऐसा नहीं होना चाहिए, अभिप्राय में तो हमें दूसरों की सेवा नहीं लेनी है और दूसरे की सेवा की अपेक्षा हमें बिल्कुल नहीं रखनी है। अगर हमारा ऐसा भाव रहता है तो पुण्य भी नहीं है, पाप है, पुण्य भी नहीं है किंतु पाप है। अम्बालाल भाई को एक पत्र लिखा है कृपाल जी ने, अम्बालाल भाई बहुत सेवा करते थे, तो अपना अभिप्राय व्यक्त कर दिया है। पत्र नंबर तो मैं भूल गया हूँ, लिखा है कि हम तो बिल्कुल नहीं चाहते। उनके भाव उनके पास, लेकिन अपने हमारा स्थान में तो हमारा योग्य भाव ही होना चाहिए, उनके स्थान में कैसे भी भाव हो, ऐसी बात। बहुत सी बातें आई है कृपालु देव के पत्रों में, सैकड़ों पहलू से बहुत स्पष्टीकरण आया है, बहुत आया है। कोई पण जीव ने काई पण परिश्रम देवो ते अपराध छे। कोई पण जीव ने पोताना माटे काई पण परिश्रम देवो ते अपराध छे। हमको ऐसा लगना चाहिए कि ये मेरा अपराध है, અને તેમાં પણ મુમુક્ષુ જીવને તેના પ્રયોજન સિવાય, તેના અર્થ એટલે પ્રયોજન સિવાય પરિશ્રમ દેવો એ જરૂર અપરાધ છે, એવો અમારા ચિત્તનો સ્વભાવ રહે છે। ક્યાં બોલે, અપને પરિણમન સે બાત કરતે હૈ વો, શાસ્ત્ર સિદ્ધાંત કી બાત હૈ, એસી બાત નહીં કે શાસ્ત્ર મેં એસા સિદ્ધાંત હૈ, हमारा परिणमन ऐसा चलता है, ये हमारा परिणमन बोलता है। चित्त माने अभिप्राय, हमारे अभिप्राय में ऐसा स्वभाव है, तथापि परिश्रम का हेतु ऐसे काम का प्रसंग तुमको क्वचित बताने का होता है। तो चिट्ठी लिखते थे मुंबई से कि हमको कुछ दिन के लिए निवृत्ति क्षेत्र में आना है, हम फलाना फलाना स्टेशन पर उतरने वाले हैं, तो इस गांव में हमको ठहरना है, वहाँ थोड़ी बहुत व्यवस्था आगे से कर लेना, ठहरने की, खाने की वगैरह वगैरह। जे विषयना प्रसंगमा अमारा प्रत्यय तुमने निशंकता छे, आपके भाव तो हम जानते हैं कि बहुत सेवा भावी है, तथापि तमने तेवे प्रसंगे क्वचित परिश्रमनु कारण थाय, यह अमारा चित्त में सहन नहीं होता है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते इस बात को, ऐसा कहते हैं। वो काम बताते हैं और वो काम करते थे, करने वाले को तो उत्साह आता है कि हमारा भाग्य कहाँ से आपकी सेवा हम करें, लेकिन हमको तो बर्दाश्त नहीं होता है, आपको परिश्रम देने का हमको विकल्प आया उस बात का हमको दुख होता है, हम वो बात बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर भी प्रवृत्ति करते हैं, फिर भी प्रवृत्ति करते हैं, वह अपराध क्षमा करने योग्य है। वह अपराध क्षमा करने योग्य इसलिए है कि उसमें कोई सांसारिक काम तो वो बताते ही नहीं थे, केवल पारमार्थिक साधना के कारण से कुछ काम बता देते थे, क्योंकि वो तो पारमार्थिक कारण के लिए निवृत्ति में आते थे, कोई सांसारिक काम के लिए निवृत्ति में नहीं आते थे, अपना घर का काम नहीं बताते थे, दुकान का काम नहीं बताते थे, काम तो बताते थे निवृत्ति में हम कैसे रहे इसके लिए, इसलिए वो क्षमा योग्य है। हमारा अपराध है, वो अपराध को ही अपराधी कहेंगे, अपराध को निरपराध नहीं कहेंगे, फिर भी इसमें कोई पारमार्थिक हमारा हेतु है तो आपको क्षमा करने योग्य है। और ऐसी हमारी कोई प्रवृत्ति के प्रति क्वचित भी आपको स्नेह न हो, अणगमा नहीं हो, अप्रियता नहीं हो, उतना भी आपको लक्ष्य रखने योग्य है। जरूरी है कि आपको अगर कोई अणगमा हो गया तो और अभक्ति के परिणाम से ही हो जाएगा, पर उसमें आपको नुकसान हो जाएगा, दोनों पहलू बता दिया है। हाँ, उनको तो अभक्ति नहीं, क्या स्नेह या अप्रियता नहीं होनी चाहिए, ऐसी बात वो लिखा है 480 में लिखा है। क्या है चलता विषय में कि द्वादशांग में भी ऐसा कहा है कि शुद्धात्मानुभूति मोक्ष मार्ग है, द्वादशांग में ऐसा नहीं कहा कि ज्ञान का क्षोभ का विस्तार बहुत है तो मोक्ष मार्ग है, ऐसा नहीं कहा है, उसको वहां भी बाह्य ज्ञान ही बोला है, वो अंतर्ज्ञान नहीं बोला उसको, और बाह्य ज्ञान की कोई कीमत नहीं है। कितने ऐसे साधक हो गए और साधक होकर के सिद्ध हो गए कि जिसको छद्मस्त दशा में बाह्य ज्ञान बढ़ा ही नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ा, जैसे शिव भूति मुनि बाह्य ज्ञान बढ़ा ही नहीं उनको, और केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, उसका विस्तार तो अनंत गुणा है, द्वादशांग से अनंत गुणा है। और वो केवल ज्ञान अंतर ज्ञान का फल स्वरूप है। अंतर में जो लीनता हुई, ज्ञानानुभूति हुई, आत्मानुभूति हुई, और उसमें लीनता बढ़ गई तो केवल ज्ञान हुआ है। द्वादशांग ज्ञान से कोई केवल ज्ञान होता है सो बात नहीं है, क्योंकि उसकी अवधि, उसकी मर्यादा वहाँ समाप्त हो जाती है, वो केवल ज्ञान का कारण नहीं बनती है। द्वादशांग वाले को भी आत्मलीनता जब बढ़ेगी तब केवल ज्ञान होएगा। जैसे हमारे गणधर देव हैं, उसको अंतर्मूर्त में ही द्वादशांग ज्ञान लब्धि से उत्पन्न होता है, लेकिन वो केवल ज्ञान का कारण नहीं बनता। वो गणधर देव भी जब स्वरूप लीनता में अंतर्मूर्त रहते हैं, ज्ञानानुभूति में अंतर्मूर्त रहते हैं, तब उनको केवल ज्ञान होता है। तो सीधी बात क्या होगी कि ये जो ज्ञानानुभूति आत्मानुभूति मोक्ष मार्ग है, वही मोक्ष का कारण है, बाह्य ज्ञान मोक्ष का कारण नहीं है। वो तो विकल्प का कारण बनता है, उससे तो विकल्प उत्पन्न हो जाता है, उपयोग बाहर निकल जाता है। तो उपयोग बाहर निकला वो बंद मार्ग है, उपयोग अंतर में गया वह मोक्ष मार्ग है। बस इसलिए राग का विकल्प का तो निषेध है ही, लेकिन उपयोग अपने परमात्मा को छोड़कर और जगह चले उसका भी निषेध है। बहिर्मुख परिणमन का निषेध है, अंतर्मुख परिणमन का आदर है। सीधी बात उतनी है। अनुभव प्रकाश में दीपचंद जी ने एक प्रश्न उठाया है कि अपना जो परम तत्व है, परमात्म तत्व है, वो ऐसा महान है, उतना उत्कृष्ट है, उतना परम उत्कृष्ट है, सर्वोत्कृष्ट है, कि जिसके आगे जगत का कोई पदार्थ तुलनात्मक रूप से उपमा को लेकर के भी हम कह नहीं सकते, बता नहीं सकते, कोई है ही नहीं। ऐसे परमोत्कृष्ट तत्व को, परमात्म तत्व को छोड़ करके तुम और जगह जाते क्यों हो? क्योंकि उसका ध्यान छूटा तब तो बाहर निकला ने, तो उसका ध्यान को छोड़ करके इससे कौन सा दूसरा पदार्थ है कि तुम दूसरे का ध्यान करते हो? क्यों करते हो? क्यों बाहर गए? बताओ क्या कारण है? इसका मतलब है कि जाने योग्य, बाहर निकलने योग्य कोई पदार्थ है ही नहीं। और इसलिए अर्यंत दशा से लेकर के या स्वरूप क्षायिक श्रेणी के परिणामों से लेकर के फिर कोई बाहर निकलते नहीं, फिर कोई बाहर निकलते नहीं, अनंत काल तक बाहर नहीं निकलते। वो अनंत काल तक बाहर नहीं निकलते, इसका मतलब ही वही हुआ कि बाहर निकलने योग्य है ही नहीं, कोई स्वरूप ही ऐसा है, इसको छोड़ करके बाहर। जहाँ अनंत अमृतमयी शांति हो और उसमें डूबने का प्रसंग हो, फिर बाहर क्यों निकले? कि जहाँ जहाँ बाहर निकलते ही आकुलता का वेदन हो, दुख का वेदन हो, ऐसा क्यों करे? ये अभिप्राय को लेकर के बात चलती है, इसी अभिप्राय को लेकर के यहाँ प्रकरण चलता है। हम्म, किसी ने प्रश्न किया था वो तो, कि आप तो बस ऐसी बात करते हैं कि बस स्वरूप में ही लीन रहना, स्वरूप में ही जम जाना, दूसरी बात करते नहीं है, लेकिन आचार्यों ने गंधर्वों ने कितने लंबे चौड़े शास्त्र लिखे, तो इतने लंबे चौड़े शास्त्र लिखे, बड़े बड़े वॉल्यूम, तो उपयोग तो उतना बाहर निकला होगा ने, और आप तो नीचे के गुण स्थान में हैं, और वो तो ऊपर के गुण स्थान में थे, तो भी उतने बड़े बड़े शास्त्र लिखे, हम क्या समझे, क्या आप इसके आगे हो गए क्या, क्या समझे हम? प्रश्न करने वाले को तो बहुत प्रश्न कहीं न कहीं से होता ही है, बहुत अच्छा जवाब दिया है कि मोक्ष मार्गी अनेक धर्मात्माएं होते हैं, बहुत हुए हैं और बहुत होंगे, ऐसे बहुत होने वाले मोक्ष मार्गी धर्मात्माओं में भी बहुभाग धर्मात्मा क्रमशः शास्त्रादिक में ते आगे बढ़ते हैं। बहुत कम आत्माएं ऐसी होती है कि जो शास्त्रादिक में भी नहीं अटकते हैं और सरसराहट अंदर में भीतर में उतर करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे धर्मात्माएं भी मोक्ष मार्गी आत्मा में बहुत कम होते हैं। हमको किसकी अनुमोदना करनी है, तीव्रता वालों की या मंदता वालों की, किसकी करनी है? देखिए बहुमत वालों की है। संख्या जिसकी ज्यादा होगी, हमको तो तीव्रता की अनुमोदना करनी चाहिए, ये बात है। और वो जो शास्त्र लिखते हैं उनके नाम भी समाज में प्रसिद्ध होते हैं, बड़े बड़े नाम वाले होते हैं, उनकी इज्जत लोग ज़्यादा करते हैं, ये भी होता है। हमारे अभिप्राय में क्या बात है वो देखो, हाँ? बात तो करुणा की है। अब देखो अरिहंत परमात्मा ने कोई शास्त्र नहीं लिखे और सिद्ध परमात्मा का तो वाणी भी नहीं होती, जो अरिहंत परमात्मा से एक स्टेज आगे हैं, बड़े हैं, हाँ महान है, इससे भी महान है, अरिहंत से सिद्ध महान है कि नहीं है? क्योंकि जहाँ तक सिद्ध दशा नहीं हुई वहाँ तक संसारी दशा है। अगर जगत के जीवों को का दो विभाजन किया जाए, दो ही क्लास रखा जाए, एक संसारी और एक सिद्ध, तो अरिहंत परमात्मा संसार में आते हैं, सिद्ध दशा में नहीं आते, ऐसी बात है। और उसको असिद्धत्व दशा बोली है शास्त्र में, क्या बोला है? असिद्धत्व। तो सर्वोत्कृष्ट दशा सिद्ध दशा है और उसको वाणी नहीं होती, तो उसको करुणा नहीं होती क्या? उसको करुणा खत्म हो गई क्या? क्या लेंगे अपन? अगर हम करुणा को सद्गुण गिने तो अकरुणा को अवगुण गिनना पड़ेगा, हाँ? ये करुणा वाली बात लौकिक है, किसमें जाती है? लौकिक स्तर में जाती है, और ज्ञानी के वचन को लौकिक का लौकिक अर्थ करना नहीं चाहिए, लौकिक अर्थ घटन में नहीं ले जाना, ये करुणा वाली बात है। दूसरे लोगों के करुणा होना, इसका मतलब क्या हुआ? इसके दुख को हम नहीं देख सकते और देखने पर हम भी दुखी होते हैं, इसी का नाम करुणा है। तो दुख का भाव होना वो सद्गुण है क्या उगुण है? वो अलग बात हो गई फिर। हाँ वो बात भी है, वो उसका एक पहलू है। ज्ञानियों की निष्कारण करुणा की स्तुति करने में मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, आत्म स्वभाव प्रकट होता है, मोक्ष मार्ग को आत्म स्वभाव प्रकट होता है ऐसा लिखा है। वो बात भी अपने स्थान में बराबर है, वहाँ उसको सकामता नहीं है। करुणा होने के बावजूद भी सकामता नहीं है, वो इसका एक पहलू है। उसको मुख्य करके कहते हैं कि जितनी निष्कामता है उतनी पवित्रता है, और वो पवित्रता की स्थिति वो निर्मोहता है, और उसको देख करके इसका स्तुति करने से हमको भी मोह का अनुभाग कम हो जाएगा। वो भी ज्ञानियों के परिणमन का एक पहलू है। और विकल्प उठना, राग होना करुणा का, वो भी एक पहलू है। एक पहलू अनुमोदन करने योग्य है, एक पहलू निषेध करने योग्य है। ज्ञानी के विकल्प अंश को भी, यहाँ द्वादशांग का ज्ञान भी एक विकल्प है, द्वादशांग ज्ञान भी विकल्प है। क्या बोले? ज्ञान को विकल्प बोला है, बहिर्मुख परिणमन हुआ। तो ज्ञानी के बहिर्मुख परिणमन का ज्ञानी खुद निषेध करते हैं, है? नहीं, मुमुक्षु उनकी अंतरंग दशा को, निष्कामता को देख करके उसका अनुमोदन करें। हाँ ऐसी बात है, हमारे स्वार्थ की बात है, भले ज्ञानी बाहर निकले। क्या करना है हमको? ज्ञानी को बाहर ही बाहर निकलना चाहिए, बाहर ही रहना चाहिए, हमको हमारा स्वार्थ का तो सिद्धि होता है, ऐसा होना क्या है? इसका मतलब क्या है कि आपको ज्ञानी को किस नजर से देखना है वो बताइए। उसकी अंतर परिणति से उसको देखना है या उसको इसकी बाह्य परिणति से देखना है? उसकी बाह्य करुणा को देखना है या उसकी निष्कामता को देखना है? बाह्य करुणा के काल में उसकी निष्कामता है तो किसकी स्तुति करने की बात चली? निष्कामता की। ध्यान से बात को ध्यान से समझना चाहिए, कहीं चूक नहीं होती, ऐसे ज्ञानियों की कहीं चूक नहीं होती, क्योंकि वो तो अपने अनुभव से अपने हृदय के रहस्य को खोल करके बोलते हैं, वो तो कोई गड़बड़ नहीं होती, उसको निष्कामता की अनुमोदना करते हैं, ऐसी बात है। तो बारांग में भी शुतात्मानुभूति, मैंने अंतर्मुखता मोक्ष मार्ग है ऐसा करके उसका अनुमोदन किया है। अतः शुद्धात्मानुभूति होने पर अगर किसी को शुद्धात्मानुभूति हो गई तो उसको शास्त्र पढ़ने का कोई बंधन नहीं है, उसको शास्त्र पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो ज्ञानी है, इसलिए उनको कम से कम रोजाना इतना तो शास्त्र स्वाध्याय करना ही चाहिए, ऐसा कोई बंधन नहीं है, क्योंकि वो तो बाहर में बाहर में आया, वो अपना काम अंदर में करते रहे बस, और आगे बढ़ते रहे मोक्ष मार्ग में, वही उनको करने लायक है। शास्त्र पढ़ने का कोई बंधन उसको डालना नहीं चाहिए और उसको कोई बंधन होता भी नहीं है। हाँ, वो कृपा तो देव ने लिया है, वो शाही समकृति के विषय में, कि कोई शाही समकृति ऐसा होता है कि रोजाना उसको नमस्कार मंत्र बोलना इतना भी बंधन नहीं है, तो भी क्षायिक संकेत होता है। वो कैसा होता होगा? ऐसा करके अंतरंग परिणति के विषय में जिज्ञासा को उठाया है। इस परिणाम को समझो, आप वाद विवाद में मत जाइए, परिणाम को समझो, बस उतनी सी बात। यहाँ तक